सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे युवा मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मुख्य विषय के तहत मैं आप सब से कल जो जिज्ञासा के बारे में बातें कर रहा था उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और मेरी बात का संबंध इस बात से होगा कि हमारी जिज्ञासा की सीमा क्या होनी चाहिए, ऐसा क्यों, उस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, बहुत से अखबारों में उसे प्रोमिनेंटली जगह भी दी गई है, वो ये है कि अमेरिका ने यह बात कही है कि जो पेटेंट, जो कॉपीराइट होता है, और वैक्सीन का जो कॉपीराइट कोविड का, उसे फ्री कर देना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने भरत झुनझुनवाला जी के लेख के बारे में आप सबसे कहा था कि आप उसे पढ़िएगा, यदि बाद में समय मिला तो फिर उसमें से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया है और शायद अब मिल भी नहीं पाएगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप फिर से उस लेख को पढ़ें, भरत झुनझुनवाला वाले लेख को, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है उन्होंने। उसमें उन्होंने बौद्धिक संपदा कानून के बारे में बताया है और इस बात की वकालत की है कि जो वैक्सीन है अभी कोरोना वैक्सीन, इसको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना वैक्सीन के कॉपीराइट को फ्री करेंगे तो देखिए होगा क्या, होगा यह कि फ्री होते ही जो दूसरी कंपनी है जो वैक्सीन बनाने की क्षमताएं रखती हैं, वो बकायदे फिर वैक्सीन बनाने लगेंगी और वैक्सीन की डिमांड जो अभी इतनी ज्यादा है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन में अभी बहुत असमानता दिखाई दे रही है। जो धनी राष्ट्र हैं उनके पास पर्याप्त वैक्सीन है, खरीद भी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उन्होंने अपने पास जमा कर लिया है, लेकिन जो गरीब राष्ट्र है वहां शुरुआत ही नहीं हो पाई है। और आज की दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है कि ठीक है 100 राष्ट्र के यहाँ फैला हुआ है तो कोई बात नहीं, हम तो सुरक्षित हैं, वो दुनिया अब नहीं रह गई है। यानी कि जब तक पूरी दुनिया कोरोना मुक्त नहीं होगी तब तक किसी भी एक राष्ट्र को अपने आप को कोरोना मुक्त नहीं मानना चाहिए, तो पूरी दुनिया का जो टीकाकरण है वो होना जरूरी है। और ये कैसे संभव होगा, जब तक कॉपीराइट फ्री नहीं करेंगे इसका उतना उत्पादन नहीं हो सकेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कीमत कम नहीं हो सकेगी। तब अमेरिका ने भी इस बात की वकालत की है, भारत और साउथ अफ्रीका ने इसकी शुरुआत की थी, अब चूंकि अमेरिका ने इसके पक्ष में अपनी बात कही है तो इस बात की संभावना हो रही है कि शायद ऐसा हो जाए। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है, कंपनियों ने बहुत खर्च किया है फार्मूला ढूंढने में, वो चुप नहीं बैठेंगी, वो इस बात का विरोध करेंगी, वो न्यायालय में जाएंगी, इसीलिए रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, तो देखते हैं कि जो कंपनियां हैं वो मानवता को ध्यान में रखते हुए, मनुष्यता को, मनुष्यता की रक्षा के लिए कैसे एक बार फिर से अपना एक कह लीजिए कि त्यागपूर्ण चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत कर पाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। रेडियो न्यूज में आपने एक खबर सुनी होगी कि दाल हमारे यहाँ कम पैदा होती है, दाल के पैदावार में हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है और उसके लिए सरकार ने विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की है। और इसका एक पॉइंट जो न्यूज में था वो ये था कि जो अच्छे उत्पादन वाले जो बीज है, जिन्हें हम उन्नत किस्म के बीज कहते हैं, तो दालों के ऐसे बीज के लगभग 20 लाख मिनी पैकेट किसानों को फ्री में दिए जाएंगे, जिस पर लगभग 82 करोड़ रुपए खर्च होगा। अभी तक जो बीज बांटे जाते थे, पहले भी ऐसा किया जाता था, उससे 10 गुना ज्यादा है। ये तो एक सामान्य सी बात हुई, लेकिन न्यूज में जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सूचना थी वो ये थी कि हम दालों का आयात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछला जो प्री हुआ था उसमें इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था उत्पादन को लेकर के, है ना, दालों के उत्पादन को लेकर के शायद इसी पर प्रश्न था। तो जो हम आयात करते हैं, देखिए आयात के आंकड़े क्या हैं, सबसे ज्यादा आयात हम तुअर दाल का करते हैं, कहीं कहीं इसे अरहर दाल भी कहा जाता है, 4 लाख टन। इसके बाद उड़द का आयात हम 3 लाख टन करते हैं और मूंग का आयात करते हैं हम 60,000 टन। ये हमारे आयात के आंकड़े हैं, तो बस दिमाग में आप थोड़ा सा रखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, तुअर का आयात हम 4 लाख टन करते हैं, उड़द का आयात 3 लाख टन करते हैं और मूंग का आयात हम 0.6 लाख टन करते हैं, अगर लाख की भाषा में ही बात करें तो। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद कल अपना डिसीजन दे दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने जो चुनाव आयोग को एक तरह से हत्यारा कहा था उसके ऊपर, अब आप देखिए कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। जब आप सतर्कता के साथ पढ़ते हैं, थोड़े इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं, तो इनके अर्थ को समझ पाते हैं और तभी आप अनुमान भी लगा पाते हैं कि ये हमारे काम की है या नहीं। देखिए उच्चतम न्यायालय ने क्या बात कही, उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही कि भाई जब डिसीजन दिया जाता है या सुनवाई कर रहे होते हैं तो जो जजेज हैं वो चूंकि चार्ज्ड होते हैं, वो पब्लिक की परेशानियों को देखते रहते हैं, तो इमोशनल होकर के कुछ इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं। हालांकि यह अनुचित है, इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, तो अनुचित तो उन्होंने माना और ये कहा कि इसमें संयम बरते जाने की जरूरत होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो फैसले के हिस्से नहीं होते, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए इसको कुछ आप आधार नहीं बना सकते उस तरीके से, और चूंकि रिकॉर्ड रखा ही नहीं जा सकता तो निकाला भी नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि इसमें निकाले जाने की कोई जरूरत नहीं है, समय के साथ साथ ऐसी टिप्पणियां गायब भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने जब मीडिया की बात आई तो कहा कि ऐसी टिप्पणियों के बारे में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से हम नहीं रोक सकते, वो मीडिया का अपना अधिकार है, वो रिपोर्टिंग करें या नहीं करें, और अगर हम उसे रोकेंगे तो फिर तो ये सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही प्रतिबंधित करना होगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। दोस्तों, एक बात आज मैं आपसे करना चाहूँगा, और खासकर जो दैनिक भास्कर अखबार है उसमें इसकी रिपोर्टिंग विस्तार के साथ छपी है कि जब हमारी फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो उस समय मुंबई जो नगर निगम है उसके कमिश्नर हुआ करते थे इकबाल सिंह चहल, उनका पूरा नाम है इकबाल सिंह चहल। और जब पहली लहर आई तो कहा जाता है कि उन्होंने उसी समय सेकेंड वेव्स को लेकर के वहां कुछ व्यवस्थाएं की, और खासकर उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो वार रूम कैसे बनेगा और ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, उसी समय काम कर दिया। उसमें बहुत डिटेल में बातें दी गई, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और यही कारण है कि आज मुंबई में देखिए अब तो खैर संख्या काफी कम हो गई संक्रमितों की, थैंक्स गॉड, लेकिन एक समय था जब बहुत ज्यादा तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई है इसके सेकेंड वेव्स की बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, वहां कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं हुई, आपाधापी नहीं मची कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की वजह से अपना जीवन खो रहे हों, ये स्थिति नहीं आई। अब आप देखें कि यहां एक अधिकारी है, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, एक व्यक्ति है, कैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि सेकेंड वेव्स आ सकती है, अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से कितने खूबसूरत रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, और कल्पना करके देखिए कि उन्होंने कितनी लोगों की जान बचा ली, और कितने लोगों की जान ही नहीं बचाई बल्कि कितने परिवारों को सुकून दिया है। दोस्तों, ये सिविल सर्विस है, ये वास्तव में सिविल सर्विस है, और ये है सिविल सर्विस का सदस्य बनने का सबसे बड़ा सुख, क्योंकि उसी समय आप इतने बड़े कुछ काम कर सकते हैं। मैंने नाम लिया है खासकर ये जो उदाहरण है, ये आपका जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर होता है मेंस का, उसमें काम आएगा, और बेहतर है कि आप इस रेफरेंस को नोट कर लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है जिज्ञासा की सीमा। सच पूछे तो इस पर मैं बात नहीं करने वाला था, इस पर मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं इस पर बात करूंगा, और इनफैक्ट सच बात यह है कि मेरे दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी कि इसकी सीमा के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन जब मुझे एक मेल मिला, और उस मेल में ध्यान होगा आपको मैंने एक बार प्राणायाम के बारे में बताया था ना कि प्राणायाम से कैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ये है, तो उसमें एक स्टूडेंट ने बड़े खूबसूरत प्रश्न किए थे पॉइंट देकर के, एग्जैक्ट तो देखिए मुझे याद नहीं है लेकिन था इसी के आसपास कि जब हम सांस लेते हैं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब छोड़ते हैं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन बाहर जाती है, इस लिए गए ऑक्सीजन का हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे थे और कहा था कि सर प्लीज इसके बारे में भी बता दीजिए। अब देखिए, इसके बारे में बताना कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, और अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इसको जानना कोई जरूरी भी नहीं है। अगर सामान्य तौर पर लें, जिज्ञासा के तहत उन्होंने पूछा, मैं उनकी जिज्ञासा को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं उसे ठुकरा नहीं रहा हूं, ना मैं निगेटिव तरीके से ले रहा हूं, उनकी जिज्ञासा ठीक है, वो जानना चाहती है। प्राणायाम मैं कर रहा हूं, बहुत समय से कर रहा हूं, उसके बहुत से लाभ मुझे हुए हैं, लेकिन मैं इनके बारे में नहीं जानता। मुझे लगता है कि मुझे जान करके भी क्या होगा, तो मैं नहीं जानना चाहता। तो दोस्तों, कल जब मैंने आप सबसे जिज्ञासा के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जो जिज्ञासा है वो प्री एग्जामिनेशन में आपको बहुत से मार्क्स दिला सकती है, तो जब मुझे ये मेल याद आया तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, अगर स्टूडेंट तैयारी करते समय पता लगा कि हर के प्रति वो जिज्ञासु हो रहे हैं और इतने ज्यादा जिज्ञासु होते चले जा रहे हैं कि उनका सारा समय अपने इस जिज्ञासा की आग को शांत करने में खत्म हो रहा है, तब तो मामला गड़बड़ी हो जाएगा। याद रखिए कि जिज्ञासा की एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप उस सीमा से बाहर जाकर के चीजों को करने लगेंगे, इसका मतलब है कि अब आप भटक रहे हैं, अब आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि भास्कर की ही मैं आज बात कर रहा हूं, उसके बिल्कुल लास्ट पेज पर एक छोटी सी खबर छपी है और उसमें एक चित्र भी छपा है चिड़िया का, और मजेदार बात है कि उस चिड़िया का नाम है फ्रॉग माउथ, और वो इस खबर के रूप में है अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं। आसपास तो यही है कि इसे दुनिया का सबसे बदसूरत पक्षी माना गया है और उसके बकायदे उसका चित्र भी छपा। अब आप देखिए कि जब आप इसको देखते हैं फ्रॉग माउथ को, तो अगर थोड़ा सा भी रुक लेते हैं, अरे ये तो सबसे बदसूरत है भी कि नहीं है, तो आपके दिमाग में वो दर्ज हो जाता है। इसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जिज्ञासा हमारी उन चीजों के प्रति होनी चाहिए जो एक जनरल इंटरेस्ट की चीज होती है, क्योंकि हम जनरल स्टडीज के तहत इसे देख रहे हैं। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो जनरल स्टडीज के तहत कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे जिज्ञासा के जो विषय भी होने चाहिए वो जनरल इंटरेस्ट के ही होने चाहिए, सभी के लिए नहीं, फिर तो तैयारी करना ही मुश्किल हो जाएगा। हम इतने घनघोर बियावान जंगल में भटक जाएंगे कि वहां से फिर निकलना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे इसके बारे में आप सबको सतर्क करना था। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अरविंद मिश्रा, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, विवेक ठाकुर, रवि आर्यन और जगमोहन गोले। आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सब आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, पूरी सावधानी बरतें। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।